गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
दूसरे योगीजन सभी इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों को समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। यानी कुछ तो अपने जैसे इनकी क्या कैसे भाई आंख से क्या हम किसी का देखेंगे नहीं, अपने नीची नजर करके चलेंगे, इस तरह की अपनी क्रियाएं करते रहते हैं। और 28 में है कई पुरुष दर्द संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, जैसे भंडारे करा दिए, जो धन से होने वाले साथ धार्मिक अनुष्ठान है उनके से, और कुछ तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं, कुछ केवल तपस्या करते हैं खड़े होकर बैठ कर दूने लाकर। और दूसरे कितने ही योगी योग रूप यज्ञ करने वाले यानी आसन आदि करते हैं बस, और कितने ही अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त, मुंह पर पट्टी बांध ली है और नंगे पैरों घूमते हैं, अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष और स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। कोई स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ करते हैं यानी गीता जी के नित पाठ कर लिए। 29 और 30 में कहा है, और कितने ही योगीजन दूसरे कितने ही योगीजन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, यानी श्वास को श्वास की क्रिया करके सूक्ष्म रूप श्वास बनाकर और काफी समय तक प्राणायाम करके सांस को लंबा बनाने की चेष्टा करते हैं। वैसे ही अन्य योगीजन प्राण वायु में अपान वायु को हवन किया करते हैं। अन्य कितने ही नियमित आहार अल्पाहारी, किसी ने फल खा लिया, कोई पत्ते पत्ते खाकर टाइम पास करा है, प्राणायाम प्राण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। यानी छोटा सांस बनाकर लंबे समय तक रोकण के अभ्यास कर लिया और लंबी आयु बनाने की चेष्टा करते हैं। और ये सभी साधक यज्ञों के द्वारा पापों का नाश करने वाले यज्ञों के जानने वाले हैं। इसका अर्थ है कि कुछ ये सभी अपने अपनी धार्मिक क्रियाओं को पाप नाशक जानने वाले हैं, अपने यज्ञमानी धार्मिक अनुष्ठानों को जो वो कर रहे हैं उनको सही मान रहे हैं, इनका पाप नाश हो रहा है ना, तो करें को नहीं सच्चाई का पता होता है। 31 में कहा है, यज्ञ कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगीजन सनातन ब्रह्म सनातन परमात्मा यानी सचिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। और यज्ञ करने वाले जो धार्मिक क्रियाएं नहीं करते, साधना भक्ति नहीं करने वाले पुरुष तो के लिए तो ना तो ये मनुष्य लोक सुखदायक, ना तो यहां सुखी और ना परलोक में, वह सुख हो नहीं सकता। अब 32 में कहा है, चौथे अध्याय के 32 में कहा है इस प्रकार, और भी नहीं एमएम, इस प्रकार की बहुत तरह के यज्ञ, यहां इन्होंने गलत कर दिया, ब्रह्मण मुखे कर दिया, वेद की वाणी में नहीं। श्री गीता जी जो श्रीमद् भगवद गीता, वेदों का तो हजारांश बोला ही जा रहा है, यहां अनुवाद गलत किस कर दिया इन्होंने, ब्रह्मण मुखे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी नहीं। इसका फैसला इन्हीं से करेंगे हम, यदि हम अनुवाद करेंगे तो ये बात नहीं मानेंगे कि रामपाल ने संस्कृत ना आती, न कबीर साहब के बारे में सट्टे मारा करते हैं। ये देखिएगा अध्याय नंबर 17 के और श्लोक नंबर 23 में ये लिखा है कि ओम तत्सत इति निर्देश है, ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है, ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। ओम तत्सत यह तीन प्रकार का ब्रह्मण माने सचिदानंद घन ब्रह्म का निर्देश नाम कहा है। अब यहां ब्रह्मण कार इन्होंने सही कर दिया, सचिदानंद घन ब्रह्म बिल्कुल ठीक है। तो यहां हम यहां लिख लें कि ये सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में कौन से में, चौथे अध्याय के 32वें श्लोक पर हम फिर आ गए। इस प्रकार बहुत प्रकार के जो हमने अभी तक पढ़े थे चौथे अध्याय के 24 से 25 से लेकर के 30 तक 31 तक, कहते हैं और बहुत तरह के बहुविधा यानी बहुत विस्तार के साथ बहुत प्रकार के यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी ब्रह्मण मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में। ब्रह्मण मुखे का अर्थ है सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख कमल से उत्तरित वाणी, कबीर वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तू कर्म जान यानी शारीरिक क्रियाओं द्वारा संपन्न होने वाले जान, और इस प्रकार ज्ञातवा मन जानकर, इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा यानी सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में वर्णित साधना से साधना करके, मंत्रों से साधना करके तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। 33 में क्या कहा तो उठे जाए कि 33वें श्लोक में हे परमतम अर्जुन, दर्व में यज्ञ की अपेक्षा यानी जो धन से होने वाले धार्मिक अनुष्ठान है, वो जैसे किता धर्म भंडारा कर दिया, किता कोई कुआ बनवा दिया, किता धर्मशाला बनवा दी या कंबल बांट दिए, कहते इस दर्व में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेयान अत्यंत श्रेष्ठ है। यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। अब 34 में कहा है कि उस जो सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में जो वर्णित है वो तत्व ज्ञान, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से, वे तत्वदर्शी न, वे तत्वदर्शी संत ज्ञानी महात्मा परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। गुणात्मा कबीर परमेश्वर जी ने 600 वर्ष पहले आकर के ये ज्ञान दिया था, लेकिन इन नकली गुरुओं ने इन तत्वज्ञानहीन संतों गुरुओं नकली महर्षियों ने उस तत्वज्ञान को हम तक नहीं आने दिया। ये हमारे शत्रु हैं, ये हमारे जीवन के नाशक हैं। इन्होंने हमारे पूर्वजों को गलत साधना करवा के प्रेत योनि में भिजवा दिया और फिर प्रेत योनि के में जाने के बाद फिर वो हमें दिखने लगे, कोई पत्र बन गए, आकर कहते हैं कि हमारा कल्याण करवाओ। अब कल्याण के लिए फिर इन गुरुओं के पास जावें, गुरुजी फिर बतावें कि तुम्हारे पिता को स्वर्ग में दूध नहीं मिल रहा, यहां तक बंडाया करते थे। एक गाय जो गुरुजी को स्वर्ग में दूध भेज देंगे, अब दूध वाली गायें गुरुजी को दान करते। गुरुजी का परिवार दूध पीता, ठाट करता और कह देते तुम्हारे गुरुजी पिताजी के पास दूध भेज दिया। अब देखो उन अनाड़ियों ने कोई पूछे कि पिताजी स्वर्ग में और दूध का अभाव, थरा भला हो, फिर स्वर्ग की तारीख कैसा जिसमें दूध देखो नहीं, हमने मूर्ख बना रखे थे। अब इसमें परमात्मा ने 600 वर्ष पहले आकर बताया था, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में उस तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि जो संत इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की सभी जानकारी देवे, सभी पार्ट्स के सभी विभागों को बता देवे, जैसे जड़ कौन परमात्मा है, तना कौन परमात्मा है, डार कौन भगवान है, शाखा कौन प्रभु है और पत्ते क्या है, सह वेदवित वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। श्रीमद् भगवद् गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 को आप रूबरू करते हैं। जय जयदार गोविंद का इसके अनुवादक है, अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 1 देखिएगा, अथ पंचदशो अध्याय 15वां अध्याय मंत्र 1। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वते प्राहु अगम यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ये देखिएगा चित्र, ये गीता की अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 1 से 4 और 16 और 17 के जो निष्कर्ष है इसे क्लियर होगा। अब ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है जिसकी ऊर्ध्व मूलम ऊपर को जड़ है, अधः शाखम और नीचे को शाखा है। अब जमीन से बाहर जो हिस्सा दिखाई देता है उसको पेड़ बोलते हैं। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में तीन पुरुषों की जानकारी है, तीन प्रभुओं की, पुरुष माने परमेश्वर, प्रभु स्वामी भगवान, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष और तीसरा परम अक्षर पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म, 15 में जाके 16 और 17 में। और इस प्रथम 15 में जाके 1 से लेकर 4 में क्या लिखा है पहले इसको क्लियर करके आगे चलेंगे। अक्षर परमात्मा कबीर जी ने सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में अपने मुखारविंद से उच्चारित वाणी में कहा था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है निरंजन वाकी डार और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार और जड़ जो है ये परम अक्षर ब्रह्म है। ये जड़ जो है उस संसार रूपी वृक्ष की समझो, जहां से सबका धारण पोषण होता है, जो सबका पालक है वो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर, परम अक्षर ब्रह्म कहो इसे, सचिदानंद घन ब्रह्म परमात्मा कहो, ये तो है मूल जड़ और तना है ये अक्षर पुरुष और ये शाखा जो है एक मोटी डार है ये काल ज्योत निरंजन, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, इसको सर्वपुरुष भी कहते हैं, इसे सर्वब्रह्म भी कहते हैं, इसे काल ब्रह्म भी कहते हैं, इसे ज्योति निरंजन भी कहते हैं। और इसकी आगे तीन शाखाएं हैं, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी और तमगुण शिव जी। हम यहां पर आगे हैं पात्र रूप संसार। अब आपको दिखाते हैं श्रीमद् भगवद् गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1-4 और 16 और 17, इसके अंदर पूरा निर्णय हो जाएगा। 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में श्लोक में कहा है श्रीमद् भगवद् गीता में कि उल्टा लटका हुआ संसारों की वृक्ष से, उल्टा लटका हुआ ऊर्ध्व मूलम अध: शाखम, ये अविनाशी एक पीपल का वृक्ष समझो, मजबूत, और इसके और जो इसको तत्व से जानता है, यानी सभी इसके भाग जानता है, इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी पार्ट्स बता देता है, सभी छंद, छंद माने विभाग, सभी बता देता है, जानता है। सह वेदवित, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। अब फिर देखिएगा श्रीमद् भगवद् गीता, ये वही है गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। अब प्रथम श्लोक में अब आसानी से समझ में आएगा आपके, ऊर्ध्व मूलम अध: शाखम अश्वथम प्राहु अगम छंदासी यस्य प्रणामी ये तम वेद स वेदवित। ये देखिएगा इन्होंने अर्थ किया है ऊर्ध्व मूलम, यानी ऊपर को जो जड़ है वो तो है पूर्ण परमात्मा, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले, यानी आदि परमात्मा वो पूर्ण परमात्मा तो समझो जड़ है, परम अक्षर ब्रह्म तो इसकी जड़ है, मूल है। और अध है, इन्होंने यहां गलत किया, अध है शाखम, ब्रह्म रूप मुख्य शाखा वाले नहीं, अध है माने नीचे होता है। ये देखिएगा इन्होंने ये दूसरे श्लोक में बिल्कुल ठीक अनुवाद किया, जाए विचलित नहीं होते थे वहां ठीक कर गए, अध है और अध है दो बार ही समय है, इसका अनुवाद इन्होंने यहां किया है। हम इन्हीं से ले लेंगे इनका जाड़ा। ये देखिए अध है माने नीचे, अध है माने नीचे, बिल्कुल ठीक है, ये तो आम विद्यार्थी भी बता सकता है। ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को पूर्ण परमात्मा रूपी तो मूल समझो, और नीचे को शाखा, अध शाखम, अध माने नीचे को शाखा वाला, ये संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, और उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष यानी जो संत मूल सहित यानी जड़ से लेकर और सभी पार्ट्स को जानता है, मूल सहित तत्व से जानता है, सह वेदवित वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। पुण्यात्माओं, ये पवित्र श्रीमद् भगवद् गीता एक अनमोल ग्रंथ है, इसमें बहुत ही निर्णायक ज्ञान दिया हुआ है, लेकिन ये तत्व ज्ञान हीन संत इस पवित्र सदग्रंथ को समझ नहीं सके, इन्होंने अड़ंगा कर दिया अनुवादों में, और श्री कृष्ण जी को सुप्रीम पावर यानी विष्णु जी को सर्वेश्वर मानकर इस गीता के अर्थों को घुमा घुमा कर सबका बैठा बैठा दिया इन्होंने, और पूरे मानव समाज को गुमराह कर दिया। सदग्रंथ सही है। अब जैसे परमात्मा कबीर जी ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को आकर ये तत्व ज्ञान दिया, सतलोक से चल कर आए थे, और यही परमात्मा के गुणों में है कि वो परमात्मा परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म अपने उस जूलोक के तीसरे स्थान से चल कर आते हैं, जहां वो रहते हैं, गति करके आते हैं और श्रेष्ठ आत्मा अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, दंड पुरुष को मिलते हैं, अच्छी आत्मा को, दंड भक्त को मिलते हैं। उनमें से एक धर्मदास जी थे और धर्मदास जी को परमात्मा ने ये ज्ञान सुनाया था 600 वर्ष पहले कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता हैं, ये इनकी जन्म और मृत्यु होती है। तब धर्मदास जी ने कहा था कि प्रभु ये वेद और ये सभी पुराण आदि कतेब कहते हैं सब झूठे हैं, इसका मतलब ये हुआ क्योंकि इनमें ऐसा कहीं नहीं लिखा, क्योंकि उनके गुरु लोग थे जो वेदों और गीता के विरुद्ध ज्ञान दे रहे थे और कह रहे थे हम वेदों और गीता और पुराणों से बता रहे हैं आपको। तो धर्मदास जी ने कहा कि ये तो फिर झूठे ज्ञान है वेदों और कतेबों में, पुराणों में, गीता जी में। परमात्मा कबीर जी ने कहा था वेद कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं जो समझे ना ही, झूठे ये हैं जो इनको सदग्रंथों को समझ नहीं सके, वेद ग्रंथ ये झूठे नहीं। अब देखना एक से लेकर चार तक आपको 15वें अध्याय का निर्णय देते हैं, देखिएगा वही श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 हमने प्रथम मंत्र पढ़ दिया, ऊपर को आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, नीचे को शाखा वाले, संसारूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं और पत्ते आदि जो छंद हैं इसके, छंद माने विभाग है, वेदनी छंद का अर्थ वेदनी होता है, और उस संसारूपी वृक्ष के वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित यानी सभी भागों को तत्व से जानता है, यह वेद तत्व वेद माने जानना तत्व से जानता है, सह वेदवित वो तत्वदर्शी संत है, वेद के तत्व जानने वाला। अब दूसरे में क्या कहा गीता ज्ञानदाता ने, केवल इतना बोल दिया कि उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप जल से तो जल के द्वारा बनी हुई, जल के द्वारा नहीं है, तीनों गुण रूप विषय पर वाला शाखा, ये तीनों तो विषय विकारों की शाखा समझो, रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु उत्तम गुण शिव जी, और नीचे और ऊपर सर्वत्र नहीं नीचे और ऊपर फैली हुई है, क्योंकि पृथ्वी लोक पर यह ज्ञान बोला जा रहा था और ब्रह्मा विष्णु महेश जी की समर्थता ऊपर स्वर्गलोक और नीचे पाताल लोक तक है, इसलिए ऊपर नीचे और ऊपर बोला है, फैली हुई है। और मनुष्य लोक में यानी काल के लोक में कर्मों के बंधन में, कर्मों अनुसार बांधने वाली, जिसने जैसे कर्म किए वैसा फल ब्रह्मा जी विष्णु जी देते हैं, तीनों गुण ब्रह्मा विष्णु महेश जी देने के ये मुख्य कारण है, मूलानी में हम ये मुख्य दृढ़ है, मुख्य कारण है, और नीचे और ऊपर फैली हुई है, व्याप्त है सभी लोगों में। अपनात्माओं ये निर्णय करना पड़ेगा कि रजगुण ब्रह्मा है और सतगुण विष्णु, ये तीनों गुण संसार वृक्ष की तीन गुण शाखा, ये शाखाएं नीचे और ऊपर फैली हुई, अब ये निर्णय करते हैं। ये लिखेगा श्री शिवपुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, संपादक हरमान प्रसाद पोदार और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, इसके 110 पृष्ठ पर ये स्पष्ट किया है कि तीनों गुण कौन है। संस्कृत शिवपुराण 110 पृष्ठ पे और रुद्र संहिता और 9वें अध्याय के लास्ट में लिखा है। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र इन तीन देवताओं में गुण है, परंतु शिव ये काल ब्रह्म गुणातीत माने गए। अब आपको दिखाते हैं, अब इसमें पवित्र शिवपुराण ने स्पष्ट कर दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश तो त्रिगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी हैं और इनका पिता जो है वो सदाशिव यानी शिव रूप में या ब्रह्मा रूप में विष्णु रूप में ऐसे दर्शन देता है, इसलिए इसको शिव भी कहते हैं, कहीं इसको महाब्रह्मा भी बोलते हैं इस ब्रह्म को, कहीं इसको महाविष्णु भी बोल देते हैं। अब देखिएगा श्रीमद देवी भागवत ये कंसेप्ट क्लियर करेगा। श्रीमद देवी भागवत हिंदी टीका सहित भाग एक ये कहां से प्रकाशित है, अर्थ देवी भागवतम सभा टीकम सहमातम, ये खेमराज श्रीकृष्ण दास प्रकाशन बंबई 4 से यहां से छपा, इसके तीसरे सकंद में यह है अथ श्रीमद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय सकंद है प्रारंभते, इसके 11 पृष्ठ पे और तीसरे सकंद में 5वां अध्याय, तृतीय सकंद है और 5वां अध्याय इसका 8वें मंत्र में 7वां यहां समाप्त हुआ 8वां प्रारंभ हुआ। भगवान शंकर बोल रहे हैं हे माता यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रधान किया है और ब्रह्मा रजोगुण और हरि विष्णु सतोगुण, विष्णु को हरि बोलते हैं सतोगुण क्यों युक्त किए हैं, क्यों युक्त क्यों किए किया है। अब संस्कृत देखिएगा ये 7वां समाप्त हुआ 8वां यहां पढ़ रही है, यदि दया दर्मणा न सदाबिके कथम अहम विहित है, मैं क्यों बना दिया विहित माने उत्पन्न कर दिया, कथम अहम विहित है तमोगुणा, तमोगुण है और कमल जय कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी को रजोगुण क्यों संभव बना दिया, शोभित है क्यों सतोगुण हरि और आपने विष्णु जी को सतोगुण क्यों बना दिया। यदि आप हम पर दयालु हो तो ये जुल्म हम क्यों कर रहे हैं, हमसे हमें ऐसा क्यों बना दिया, क्यों युक्त कर दिया। अब और कंसेप्ट क्लियर करते हैं, अपनात्मा ये स्पष्ट होगा कि रजगुण ब्रह्मा जी हैं सतगुण विष्णु तदगुण शिव जी। अब और कति कंसेप्ट क्लियर करते हैं मार्कंडेय पुराण में, मार्कंडेय पुराण सचित्र मोटा टाइप की और हिंदी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, ये प्रकाशक है मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान, इसके 123 पृष्ठ पर आप देखिएगा, ये 123 पृष्ठ पर इस तरह स्वयंभू परमात्मा की तीन अवस्थाएं हैं, रजोगुण प्रधान ब्रह्मा तमोगुण प्रधान रुद्र और सत्व प्रधान विश्वपालक विष्णु हैं और ये ही तीनों देवता हैं और ये ही तीन गुण हैं। कति कंसेप्ट क्लियर हो गया कि ये तीन गुण यही हैं। अपने आत्मा ये सदग्रंथ ये कोई बालकों का खेल नहीं, किनको समझ ले परमेश्वर कबीर देव जी के बिना ये बुद्धि कोई हमें दे नहीं सकता। परमेश्वर कबीर जी ने आप ही अपनी महिमा आपा बताई, आपा आरती आपा साध्य आपा किंगर आपा वाद्य आपा ताल झां चंदकारा आप नचे अब देख हारा। परमेश्वर ने आके बताया कि गुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना जो थोथा बुछड़े मूड किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी समझे न सार रहे अज्ञानी। अब परमात्मा आप पे आकर बताया करते थे कि गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी और समझे न सार रहे अज्ञानी, गुरु बिन काबू पाया ना जाना जो थोथा भूसड़े मूड किसाना, कि जैसे ये धान जाड़ दिए उससे धान अलग कर दिए प्राण पड़ी रहेगी और कोई प्राण में कुटे उस भूसने तो उसमें केवल लगा उसने वो तो व्यर्थ प्रयत्न है। तो तत्व ज्ञान के अभाव से सदग्रंथों को ना समझकर जो भी साधनाएं कठिन से कठिन या जैसी भी जिसने की वो थोथे भूस पर लठ मार गया था थोथे भूस को कूट रहा था, यूज लेस रहा। तो परमात्मा कहते हैं गुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूछड़े मूड किसाना। और गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, और समझे ना सार रहे अज्ञानी। अपुणात्मा, आज सुबह के सत्संग में और कल के भी सत्संग में रह रहकर ये बताया गया था कि ना तो ब्रह्मा जी, ना विष्णु जी, ना शिव जी, और ना ही सतयुग के ब्राह्मण ऋषि महर्षि वो वेद ज्ञान से परिचित नहीं थे, क्योंकि वेदों में कहीं पर भी दुर्गा की पूजा का प्रावधान नहीं है, केवल एक पूर्ण परमात्मा की साधना का ही निर्देश है। या फिर ब्रह्म अपनी साधना बताता है कि मेरा एक ओम नाम है, उसके अतिरिक्त किसी भी देवी या देवता की, ब्रह्मा विष्णु में इसकी रंग किसी की पूजा का कोई प्रावधान नहीं। और इन वेदों को ना समझकर ऋषि महर्षियों ने कठिन से कठिन साधनाएं की, उसे सिद्धियां आ गई, मोक्ष प्राप्ति नहीं हुई। अब श्रीमद् भगवद गीता जी को आगे समझेंगे बहुत ही आसानी से। अब देखिएगा, अब फिर हम 15वें अध्याय पर आते, पंचदशो अध्याय। ये प्रथम हमने पढ़ लिया कि संसार रूपी वृक्ष का ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को आदि पुरुष परमेश्वर, वो परम अक्षरम तो मूल है, जड़ है, और अजय शाखा नीचे को शाखा। और जो संत ये नीचे को शाखाएं हैं, और जो उस जिसे वेद कहते हैं, जिस वेदादि जिसके पत्ते कहेंगे, और उस संसार वृक्ष को जो पुरुष, जो संत तत्व से जानता है, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, सर्वेदवित वो तत्वदर्शी संत। अब दूसरे में क्या कहा है, संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप शाखाएं, तीनों गुण रूप शाखाएं, विषय पर वाला शाखाएं नीचे और ऊपर फैली हुई है, सर्वत्र नहीं। और कर्मों के अनुसार, यानी जैसे कर्म जिसने कहे उसका फल ये ब्रह्मा विष्णु महेश ही देते हैं, इसमें कोई परिवर्तन वो नहीं कर सकते। ऊपर और नीचे फैली व्याप्त हो रही हैं सभी लोगों में, ऊपर और नीचे। अब तीसरे में क्या कहा है, इस संसार का, यानी यहां जैसे दूसरे में पत्र में जाए के दूसरे श्लोक में, ये तीनों गुण रूपी शाखा, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी रूपी शाखाएं, एक बार फिर देख लीजिए, अब समझ में आ जाएगा। ये है संसार रूपी उल्टा ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला वृक्ष। अब जड़ तो ऊपर नहीं, परम अक्षर ब्रह्म है, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, और गीता ज्ञानदाता ने केवल इतना ही ज्ञान दिया है, अजय शाखम तीनों गुण रूपी शाखा वाला। अब ऊपर को जड़ वाला आदि पुरुष परमेश्वर रूपी मूल तो वो ऊपर है परमात्मा, और अजय शाखम नीचे शाखा वाला, और तीनों गुण रूपी शाखा उस संसार वृक्ष की, ये तो पूर्ण परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म, और ये तना है, ये अक्षर पुरुष, इसको परब्रह्म भी कहते हैं, और ये इसके मोटी डार निकली है समझो, ये सरपुरुष यानी सरब्रह्म या काल रूपी ब्रह्म, ये ब्रह्मा विष्णु में इसके पिता है। और तीनों गुण रूपी शाखा, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, ये शाखा है, और पात रूप संसार। परमेश्वर ने अपने सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में बताया था 600 वर्ष पहले, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन भी कहते हैं सरपुरुष को, सरपुरुष को, ब्रह्म को, निरंजन वाकी डारे तीनों देवा शाखा है, पात रूप संसार। अपने आत्मा जो जमीन से बाहर दिखाई देता है तो हिस्सा, वो वृक्ष कहलाता है, पेड़ है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये अक्षर पुरुष तना, और निरंजन इसको सर्वपुरुष भी कहते हैं, सर्वब्रह्म भी कहते हैं, काल भी बोलते हैं, काल पुरुष भी कहते हैं, काल ब्रह्म भी कहते हैं। और निरंजन वाकी डारे तीनों देवा साखा है, पाते रूप संसार। कितना निर्मल ज्ञान भगवान ने दे रखा अपनी सिंपल वाणी, सिंपल लैंग्वेज में, अमृत वाणी में। अपना आत्माओं सन 1398 से लेकर सन 1518 तक कबीर परमेश्वर जी इस अमृत ज्ञान की वर्षा करते रहे। हमारा धन्यवाद है कि उस पुण्यात्मा धर्मदास जी ने ये लिपि बंद कर ली और आज हमें ये प्रमाणित हो गया कि परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले जो ज्ञान दिया था आज हमारे सदग्रंथों में विद्यमान है। तो कबीर परमेश्वर जी संस्कृत लैंग्वेज से भी अननोन थे और फिर भी सब सदग्रंथों को जानते थे। तो वो क्या थे? वो परम अक्षर ब्रह्म थे, वो पूर्ण परमात्मा थे, सारी सृष्टि के रचनार थे। और जो संस्कृत भाषा के जानने वाले जिनको हम मैं ऋषि कह के उनकी महिमा गाते गाते मुंह मछाले पड़ गए और वो नरे अज्ञानी थे, उन्हें कह कह का नहीं पता था इन सदग्रंथों के बारे में। अब देखिएगा इस अनमोल गीता ज्ञान को, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 को हम पढ़ रहे हैं, अथ पंचदशो अध्याय, पंद्रहवां अध्याय। हमने दूसरा मंत्र अब पढ़ना है। उस संसार वर्ष की तीनों गुण रूप रजगुण गर्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिवजी रूपी पर्वधा यानी ये बढ़ी हुई विषय पर वाला शाखा, विषय भोग रूप कोपलों वाली देव मनुष्य और त्रक आदि योनि रूपी शाखा गणगत रखे हैं। सीधा सारथ है वो तीनों गुण रूपी शाखा, शाखाएं नीचे और ऊपर फैली हुई हैं। यदगुण दुर्वासन को निष्णु शिव जी का स्वर्गलोक पृथ्वीलोक और पाताल लोक पर अधिपत्य है, एक एक विभाग के मंत्री हैं और हमें केवल कर्म अनुसार यही देते हैं जो कुछ भी पुण्य या पाप का फल, और कर्म के अनुसार कहते हैं यही हमें यहाँ बांधे रखती हैं। इसकी ये मुख्य कारण है बांधने की या फंसाए रखने में। अब तीसरे में क्या कारण है? इस संसार वर्ष का यानी सृष्टि रचना के बारे में स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहां विचार काल में नहीं। गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि तेरे और मेरे डिस्कशन में, इस गीता संवाद में, मैं तुझे इस सृष्टि रचना संसारोपी वृक्ष की रचना के बारे में नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मुझे इसके आदि और अंत का कोई ज्ञान नहीं। इसने तो सिर्फ इतना बता दिया कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, बस तीनों गुण रूपी शाखा, बाकी शेष उसको कुछ नहीं बताया गीता ज्ञानदाता है। अब पंद्रहवें अध्याय का तीसरा मंत्र, इस संसार वर्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहां विचार काल में यानी गीता जी के ज्ञान में नहीं पाया जाता, वैसा यहां विचार काल में नहीं पाया जाता क्योंकि न तो इसका आदि है और न अंत तथा न इसकी अच्छी प्रकार स्थिति है। अब कहने अभाव है तो मुझे नहीं मालूम इसका, इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम, हम इसके साथ साथ इसको पढ़ सकते हैं, सुविरुद्ध मूलम यानी अति दृढ़ मूल वाले, अति दृढ़ वाले जो सतलोक है परमात्मा का वो कभी नाश में नहीं आता। जहां परमेश्वर रहता है वो जड़ है, वहां वो अति दृढ़ मूल वाले उस अमर परमात्मा रूपी जड़ वाले इस संसार रूपी पीतल के वृक्ष को यानी संसार रूपी वृक्ष की संरचना के बारे में जानकारी के लिए दृढ़ेन असंग शस्त्रेन छित्वा, इस दृढ़ यानी अटल जिसमें कोई मीन मेख ना हो यानी वो पूर्ण परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान वैराग्य रूप नहीं, असंग शस्त्रे तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा काटकर अर्थात तत्वदर्शी सब मिलने के उपरांत उसको अच्छी तरह समझ कर अब चौथे में क्या निर्णय दिया है। पंद्रहवें अध्याय का चौथा श्लोक गीता जी का हम पढ़ रहे हैं। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए जिसमें गए हुए पुरुष यानी साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते और जिस परमेश्वर से यानी गीता ज्ञानदाता किसी और परमेश्वर के विषय में कह रहे हैं, जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है अर्थात जिस परमेश्वर ने संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, पूरे ब्रह्मांडों की रचना की है और उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। अब गीता ज्ञानदाता फाइनल कर रहा है कि उस परमेश्वर की भक्ति करने से फिर वो साधक वहां चला जाता है, परमात्मा के उस परम पद की प्राप्ति कर लेता है, जहां जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और ये भी समझ कर रहा है कि जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की और ये भी समझ कर दिया कि गीता ज्ञानदाता कहता है केवल उसकी ही भक्ति करनी चाहिए, अपने आत्मा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में गीता ज्ञानदाता स्वयं कह रहा है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इससे ये सिद्ध हो गया कि श्री गीता जी के ज्ञान देने वाले भगवान की साधना से भी जन्म मृत्यु नष्ट नहीं होती, समाप्त नहीं होते, पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं होता, वो पद प्राप्त नहीं होता, वो स्थान प्राप्त नहीं होता, जहां जाने के बाद फिर लौट कर प्राणी कभी नहीं आते। वो परमात्मा गीता ज्ञान दाता से और है, वो मूल रूपी परमात्मा है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब देखिएगा अध्याय नंबर 2 का श्लोक नंबर 12 श्रीमद् भगवद् गीता और अध्याय नंबर 2 का और श्लोक नंबर 12 न तो ऐसा ही है कि किसी काल में मैं नहीं था, ये काल बोल रहा है श्री कृष्ण जी, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। इससे सिद्ध गीता ज्ञानदाता कहता है कि तेरी भी जन्म मृत्यु है और मेरी भी है। अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 में, ये 5 नंबर है, ये आगे 6 है, ये 5 याद मुआद है इसका, हे परंतम अर्जुन मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इसे सीधे गीता ज्ञान दाता भी जन्मता और मरता है, ये अविनाशी नहीं है। और गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 9 में, हे अर्जुन मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल है, अलौकिक है। अपने आत्माओं अभी आप जी ने गीता जी अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 5 और 9 देखा, इसमें स्पष्ट किया है, ये अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 5 है, ये छठा यहां ही छठा पांचवें का यहां अनुवाद, हे परंतम अर्जुन मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता मैं जानता हूं। हो गया क्लियर, गीता ज्ञानदाता भी नाशवान है, ये सर्वब्रह्म है, सर्वपुरुष भी बोलते हैं इसको। और 9वें में कहता है कि अर्जुन अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 9 में, अर्जुन मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं अलौकिक है, यानी जन्म तो होते हैं इसे सिद्ध हुआ। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञान दाता कहता है मेरे जन्म तो हुए हैं लेकिन ये ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं जानते। इसके 2 में मेरी उत्पत्ति को मेरे जन्म को प्रभुमान जन्म को अर्थात लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि जन जानते हैं क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं और महर्षियों का आदि कारण हूँ, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश और जितने भी देव देवता इस काल के लोक में हैं ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। अब ये स्पष्ट हो गया कि गीता ज्ञान दाता तो नाशवान है, जन्म मृत्यु होती है, इसको सर्वपुरुष भी कहते हैं, इसको सीधा ब्रह्म भी बोलते हैं। ये ब्रह्म तो इससे नष्ट जो परमात्मा है सात संग ब्रह्मांड का उसको पर ब्रह्म बोलते हैं, उसको अक्षर पुरुष भी कहते हैं और इन दोनों से जो सुप्रीम पावर है कुल मालिक है वो परम अक्षर ब्रह्म कहलाता है। अब गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा, देखिएगा अष्टमा अध्याय 8वां अध्याय इसके प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा, अर्जुन उवाच किम तत्परम किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदेवम किम उच्यते। हे पुरुषोत्तम तत् ब्रह्म क्या है, तत् माने वह ब्रह्म तत् ब्रह्म क्या है। अब गीता जी अध्याय नंबर 7 के यहाँ श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि जरा मरण मोक्षाय, जरा और मरण के जरा माने बुढ़ापा, मरण माने मृत्यु से मोक्ष के लिए, जरा यानी बुढ़ापे और मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए माम आश्रित यतन्ति ये, मेरे आश्रित होकर कि मैं जो ज्ञान दे रहा हूँ कि तत्वदर्शी संत की खोज कर ले और वो जो मेरी इस बात को मान लेते हैं फिर वो प्रयत्न करते हैं, जरा मरण मोक्ष मम आश्रित मेरे इस ज्ञान को आधार मानकर और जो जरा और मरण यानी बुढ़ापे वृद्धावस्था और मृत्यु से छूटने के लिए जो प्रयत्न करते हैं ते ब्रह्म तत्विदु वे तत्ब्रह्म को उस परम अक्षर ब्रह्म को जानते हैं और कृष्ण माने सारे अज्ञातों से परिचित हैं, कर्म से अखिलम और सभी कर्मों से वो परिचित हो चुके हैं, वो पूरे अज्ञातम ज्ञान से परिचित हो जाते हैं और तत्ब्रह्म को समझ लेते हैं तत्व ज्ञान के आधार से, फिर तो वो जरा और मरण से छूटने के लिए ही ये तंति प्रयत्न करते हैं। अब इसका अनुवाद लेकिन लेखनी से जो मेरे शरण होकर जरा मन वृद्ध अवस्था मरण से मृत्यु से छूटने के लिए यत्न करते हैं वे उस वे व्यक्ति तत् ब्रह्म उस ब्रह्म को संपूर्ण धातुओं को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। 30 मंत्र में इसमें ये पूछा है कि जो अधिपूत अधिदेव आदि सही यज्ञ सहित मुझे जानते हैं वो अंतकाल में मेरे को ही प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन वो क्या मन ने सब कुछ मान रहे हैं वो तो मेरे में ही आ जाएंगे। अब यहाँ तुरंत ही 8वां अध्याय शुरू हो जाता है, यह तुरंत ही पूछा अर्जुन ने किम तत्ब्रह्म किम तत्ब्रह्म वो तत्ब्रह्म क्या है, कौन है वह ब्रह्म क्या है, यानी जिसको जानने के बाद फिर कोई अन्य वस्तु की डिमांड नहीं रखता। इसका उत्तर 8वें अध्याय के 3रे मंत्र में गीता ज्ञान दाता ने दिया है, 8वें अध्याय के 3रे मंत्र में वह परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म है। अब हम आते हैं 15वें अध्याय के और 16-17 श्लोक में। पुण्यात्मा, इस शिक्षा का लाभ आप जी को अब प्राप्त होगा। हमने शिक्षा का आधार केवल यही समझ रखा था कि अच्छी नौकरी प्राप्त कर लेंगे, दो रोटी बढ़िया मिल जाएंगे। इस शिक्षा ने हमें कति बिगाड़ दिया, बठा बठा दिया, बेईमान बना दिया, भगवान से कोसों दूर कर दिया। परमात्मा ने ये शिक्षा देना अनिवार्य समझा इस युग में, क्योंकि अब हम सदग्रंथों को समझ कर शिक्षित होने के नाते हम परमात्मा को पहचान लेंगे। सदग्रंथों को हम स्वयं समझ सकेंगे और अपना कल्याण करा सकेंगे। इस कलयुग में हमें एक ये दाव लग गया है। अब पुण्यात्मा 15वें अध्याय का आप जी ने 1 से लेकर 4 तक जो श्लोक पढ़े, इसमें स्पष्ट हो गया कि वो परमात्मा कोई और है जो संसार रूपी वृक्ष की जड़ है। यानी जैसे संसार रूपी वृक्ष है तो वृक्ष को आहार कहां से मिलता है? जड़ से ही मिलता है, मूल से मिलता है। अब 15वें अध्याय का 16 और 17 श्लोक ये कंसेप्ट क्लियर करेगा कि 3 परमात्मा है। सर्वपुरुष ये ब्रह्म है जो गीता ज्ञान दे रहा है, श्री ब्रह्मा श्री विष्णु श्री शिव जी के ये पूज्य पिताजी हैं, और अक्षर पुरुष ये 7 संत ब्रह्मांड का चित्र और दिखाते हैं। ये देखिएगा, 1 ब्रह्मांड का चित्र, 1 ब्रह्मांड का लघु चित्र। इस 1 ब्रह्मांड में क्या क्या व्यवस्था है, इसमें ये सारा एक एलिपिकल शेप है, इसकी एक अंड आकार है, अंडे जैसा। और इसमें ये पृथ्वी लोक है जहां हम बैठे हैं। इस पृथ्वी लोक से नीचे ये पाताल लोक है, सबसे नीचे पृथ्वी लोक पर, पाताल लोक पर, और यहां ये स्वर्ग लोक है, इंद्र का लोक। और यहां पृथ्वी के नीचे पाताल है, ऊपर स्वर्ग है। इसलिए गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1, 2, 3, 4 में इसका वर्णन है। वो यहां से बोला जा रहा था ऊपर और नीचे, रजगुण ब्रह्मा जी और सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, ये अपनी अपनी राजधानियों में रहते हैं। इनके शरीर से निकल रही तरंगे इन तीनों लोकों के प्राणियों को प्रभावित करते हैं, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश जी केवल इन 3 लोकों पर एक एक विभाग के मंत्री हैं। दैट्स ऑल। इसी ऊपर ये ब्रह्म लोक है, ये सारा ब्रह्म लोक है, ये सब ब्रह्म लोक है, और ये जितना भी यहां की व्यवस्था सारी ये ब्रह्म लोक ही कहलाता है, ये बाह्य भाग है इसका। तो इस ब्रह्म लोक के अंदर इस काल भगवान ने यहां एक 3 गुप्त स्थान बना रखे हैं। यहां ये वो गुप्त स्थान है जहां ये केवल दुर्गा को साथ रखता है, अन्य कोई प्राणी इधर नहीं आ सकता। इसने यहां से इसको बंद कर रखा है, अपनी लक्ष्मण वाली रेखा की तरह यहां इसने रेखा खींच रखी है। और इस ब्रह्म लोक के अंदर काल में नकली सतलोक, एक महा इंद्र का द्वीप है, उसके ऊपर नकली सतलोक, नकली अलकलोक, नकली अगमलोक और नकली अनामी लोक, अकह लोक की ये झूठी रचना इस काल ने धोखा देने के लिए बना रखी है। और ये यहां रहता है, इसने यहां 3 स्थान बना रखे हैं, एक रजोगुण प्रधान क्षेत्र और एक सतोगुण प्रधान क्षेत्र, एक तमोगुण प्रधान क्षेत्र। जब ये दुर्गा के साथ ये काल यहां रजोगुण प्रधान क्षेत्र में रहता है, स्वयं ये ब्रह्मा रूप धारण कर लेता है, और दुर्गा को ये सावित्री रूप धारण कर लेता है। इन दोनों के संयोग से जब पुत्र उत्पन्न होता है तो वो रजोगुण युक्त हो जाता है, उसका नाम ये ब्रह्मा रख देते हैं, उसकी आकृति अपने पिता जैसी बन जाती है। यहाँ पर सतोगुण प्रधान क्षेत्र इसने बना रखा है, वहां ये विष्णु रूप में रहता है और दुर्गा को लक्ष्मी रूप में रखता है। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो विष्णु के स्वरूप हो जाता है, जो विष्णु रूप में काल विराजमान है और सतोगुण युक्त हो जाता है, और यही काल फिर तमोगुण शिवजी के रूप में रूप धारण करके यहां रहता है, ये तमोगुण प्रधान क्षेत्र में, और इस दुर्गा को पार्वती रूप में रखता है। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो ऑटोमेटिकली तमोगुण युक्त हो जाता है, उसका नाम ये शिव रख देते हैं, इस यहां से उत्पन्न हुए पुत्र का नाम विष्णु रख देते हैं, और इस रूप में जब ये अपना संसारी कर्म करते हैं उनसे उत्पन्न हुए बच्चे का नाम वो ब्रह्मा रख देते हैं, उनका ऐसा ही स्वरूप हो जाता है। अब रजगुण सतगुण और तमोगुण किस प्रकार प्रधान क्षेत्र है ये बताते हैं। जैसे एक मकान में तीन कमरे हो, एक कमरे में अश्लील फोटो लगा रखे हैं, और उस कमरे में जब व्यक्ति जाएंगे उनके वैसे ही भाव बने रहेंगे, चारों तरफ वो सजा रखा है उसके वैसे ही भाव बन जाएंगे, उस मलिनता आनी प्रारंभ हो जाएगी जब तक उस कमरे में उन चित्रों को देखता रहेगा। और दूसरे में लगे हैं साधु संत फकीरों के महापुरुषों के, तो वहां जाते ही उन्हीं जैसा शीतल स्वभाव उनके जीवनी को याद कर करके है और वैसा ही स्वभाव बन जाता है। और तीसरे में लगे हों सूरवीरों के शहीदों के, तो वहां जाते ही वैसे ही उनकी लीलाओं को याद कर करके वैसे ही खून खोलने लग जाता है, उसी तरह के विचार बन जाते हैं। तो काल ने एक भयंकर जाल बना रखे हैं। जब ये रजोगुण प्रधान क्षेत्र में होता है तो दोनों का दुर्गा का और उसका वैसा ही स्वभाव बना रहता है, और उस दौरान जो पुत्र उत्पन्न होता है उसी स्वभाव से संबंधित उसमें गुण प्रवेश कर जाते हैं और वो रजोगुण युक्त हो जाता है। इसी प्रकार सतोगुण युक्त सतोगुण प्रधान क्षेत्र में जाते हैं, ये दोनों वहां रहते हैं जब तक ये पुत्र उत्पन्न नहीं हो जाता वहीं रहते हैं। इन्होंने सुनियोजित षड्यंत्र रखा काल ने, तो फिर वो पुण्यात्मा जो वहां जन्म लेता है विष्णु रूप में तो अपने आप वो सतोगुण प्रधान हो जाता है, और जब तमोगुण प्रधान क्षेत्र में ये दोनों रहते हैं वहां जो पुत्र उत्पन्न होता है वो ऑटोमेटिकली तमोगुण युक्त होता है। फिर इन दोनों को कोमा में रखता है, इसको बेहोश रखता है और इनकी परवरिश जारी रखते हैं। जब ये युवा हो जाते हैं ब्रह्मा को कमल के फूल पर, विष्णु को शेषनाग की सैया पर, और शिवजी को कैलाश पर्वत पर होश में ला देता है। फिर इन तीनों को इकट्ठा कर देते हैं, फिर इनसे अपना ये उल्लू सीधा करवाता है। इनको भी इसने यथार्थ ज्ञान नहीं दे रखा, तीन देव सो उसको धावे निरंजन का ये पार न पावे। आज तक गुरुवा विष्णु महेश को नहीं पता तुम्हारे पिताजी कौन है। तो पुणात्मा अब आपके समझ में आओगे तीन पुरुष कैसे हैं। अब एक ब्रह्मांड है, इसमें आपने देख लिया, ये देखिए ये एक ब्रह्मांड आपने देखा, एक चित्र, इसमें ये सात नीचे के लोक हैं, इसमें ये श्री विष्णु जी का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, ये पृथ्वी लोक, शिव लोक, ये स्वर्ग लोक, और ये धर्मराय का लोक, और इस ब्रह्म लोक में भी इसने कई स्थान बना रखे। ये केवल इतना ही सामग्री इस, और यहां जो ये लोक है परमात्मा ने भी अपना एक गुप्त रूप गुप्त स्थान बना रखा कबीर परमेश्वर पूर्ण परमात्मा ने। जैसे प्रत्येक देश का प्रत्येक देश में राजदूत भवन होता है, यहां ये पूर्ण परमात्मा अन्य रूप में रहते हैं, और जिसको ये न काल जान सकता है न ब्रह्मा विष्णु महेश जान सकते हैं, इसी ब्रह्मांड में ये परमात्मा ऐसे स्थान पर स्वयं भी रहते हैं। ये एक ब्रह्मांड है, समझो एक ब्रह्मांड। ऐसे ऐसे काल भगवान के यानी सर पुरुष के ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड है, ये देखिएगा। यह ज्योति निरंजन काल अर्थात ब्रह्म के लोक 21 ब्रह्मांड का लघु चित्र। आप जी ने जो ये ब्रह्मांड देखा, अब ये समझो अब ये हो गया है, अब ये जो एक गेंद सी दिखाई देती है ये समझो एक ब्रह्मांड है, और ऐसे पांच ब्रह्मांडों का ग्रुप बनाकर इसने एक महाब्रह्मांड बना रखे है। ऐसे ऐसे पांच पांच के चार ग्रुप बनाकर चार महाब्रह्मांड बना रखे हैं। इस प्रकार ये 20 ब्रह्मांड इन चार ग्रुपों में यहां अलग से रोक रखे इसने, और 21वां ब्रह्मांड ये है इसका अपना, जहां ये स्वयं रहता है।